जी हाँ, पाकिस्तान की सीख के एजेंसी से कैसे काम करते हैं। अच्छा जी, वो कहते हैं तो 2020 में एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू के लिए इनको बिठाया गया था कि जी सीसीस की जो है वर्किंग ठीक नहीं है, इनकी गवर्नेंस ठीक नहीं है, तो आप फाइंड आउट करें, ये इंटेलिजेंस एजेंसी है मुल्क की, तो ये कैसे काम ठीक नहीं कर रही है। तो उन्होंने आज कहा है, क्योंकि कोर्ट ने कहा था, एक जो है सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था कि भाई फाइंड आउट करो कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों इनकी इतनी ज्यादा शिकायतें आ रही हैं, तो उसके ऊपर ये रिव्यू कमेटी बिठाई थी। तो उस रिव्यू कमेटी ने बिल्कुल कहा जी जज साहब तुम सही सो कम सही नहीं कर रहे, बिल्कुल ठीक काम नहीं कर रहे हैं। और वो कहते हैं जी कि ये जो अदालतों के अंदर जो है वो ले, क्योंकि क्या हुआ माजिद भाई, ये सीसीस वालों ने ना कुछ प्रूफ्स ला के दे दिए उसको अदालत को। अब अदालत जो है, जो कोर्ट है, वो तो भाई अब अपने मुल्क की हाईएस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी जो है आरसीएमपी से भी ऊपर है ना ये सीसीस वाले, तो सीसीस वाले तो अब उसकी जो रिपोर्ट या इन्फॉर्मेशन आती थी उस पे वो कहते थे जी जाहिर है हमने तो उसके ऊपर केस जो है वो करना है। लोग उसमें कंप्लेन करते थे कि नहीं, ये इन्होंने सारी इलीगली और झूठी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। उससे जब बेशुमार शिकायतें आई ना, तो कोर्ट ने फिर ऑर्डर दिया कि भाई फाइंड आउट तो करो कि सच क्या है, ऐसा है भी कि नहीं है। एंड थैंक्स टू देयर कोर्ट्स, यू नो कैनेडियन कोर्ट्स, कि जो इन चीजों का एक्शन लेती हैं थैंकफुली। तो उन्होंने जब एक कमेटी बिठाई तो उसने कहा हाँ जी बिल्कुल, आपका आपका शक ठीक था कोर्ट का, ये इलीगली बहुत सारी अलेजली इलीगली इन्फॉर्मेशन इन्होंने जमा की थी और ऐसे कोर्ट्स में लेकर आए थे। तो आज उनको जी बड़ा खेंचा किया है उनको कहा जी पैन सीधे हो जाओ वरना फिर एक्शन लिया जाएगा आपके खिलाफ। ठीक है जी, हाँ जी यानी मुझे हैरत होती है यार, ये कनेडा जो है ना, वैसे ये भी अलग के नाम पे चल रहा है, हालात इनके भी कुछ ठीक नहीं है।
क्यों?
क्योंकि इनके भी सिस्टम देखो ना जरा कैसे हैं सिस्टम चल रहे हैं। अच्छा जनाब, यार्क यूनिवर्सिटी से जनाब आज आई है स्टोरी, और उन्होंने कहा जी हमने सारे कनेडियंस का जो कनेडा डे है उसको बर्बाद हमने करना है उसकी वजह ये नहीं बेचारे बड़े मस्कीन है। ये जो वर्कर्स है ना माजिद भाई न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के, ये कह रहे हैं कि हम July 31, 2021 से रिक्वेस्टें कर रहे हैं कि भाई हमें विदाउट कॉन्ट्रैक्ट रखा हुआ है, क्योंकि जब आप विदाउट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो जब आप आते हैं ना ऑफिस में चल के, तो आपको उसी वक्त कहा जा सकता है जी विदाउट आपको बेनिफिट्स, आप जाओ घर जाओ, कोई आपको कुछ भी नहीं, ना आज की सैलरी मिल रही है ना बेनिफिट्स मिले। तो ये इनको 2021 से कह रहे हैं कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स को रिन्यू करो, जो कि यूनिवर्सिटी रिन्यू नहीं कर रही है। तो अब इन्होंने कहा है जी कि बड़ी कोशिश वैसे इन्होंने की है, जो यूनियन है उसने इनके बीच में बातचीत कराने के लिए, लेकिन स्टिकिंग पॉइंट्स हैं जो कि सॉल्व नहीं हो रहे। तो अब इन्होंने कहा जी एन कनेडा डे के ऊपर हम जो है स्ट्राइक पे जा रहे हैं। ठीक है जी, हाँ जी ना असी मनावांगे कनेडा डे ना तुहानू मनाण देंगे, देखो तुसी असी की करने हैं तुहाडे नाल। तो जनाब ये वो कह रहे हैं July 1, 12:01 AM से हम जा रहे हैं लीगली, हम वॉकआउट कर रहे हैं अपने जॉब से। अच्छा जी, सऊदी क्राउन प्रिंस जो हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो अब जा सकते हैं तुर्की, और इसकी जो इन्फॉर्मेशन है आज तैयब अर्दोगान साहब ने कही है। बड़े ये दुश्मन थे, जानी दुश्मन थे माजिद भाई, पता ही है आपको। June 22 को MBS जो है वो ही कैन बी ऑन द फर्स्ट विजिट टू टर्की। बहुत सारे मसले हैं ना तुर्किया के साथ माजिद भाई, एक तो इनकी जो एम्बेसी थी उसी में वो जो है जमाल खशोगजी मरा था, उसको मर्डर किया गया था, फिर ये
इल्जाम भी इस पे लगाया था,
और इल्जाम भी इस पे लगाया गया था डायरेक्ट इल्जाम। और भी बहुत सारी चीजें थी, और टर्की को ये पसंद नहीं करते थे क्योंकि ये बहुत कंजर्वेटिव थे। टर्की जो है ज्यादा ही आजाद है, वो यूरोप के साथ अपने आप को अलाइन करता है ना, तो काफी सारे इनके आपस में मसले थे। लेकिन अब वो कह रहे हैं जी अर्दोगान साहब ने कहा है कि नहीं, ए मेरा भरा है, ये हुड़ा रहा है, इस दे नाल मैं प्यार दियां पींगा वधानियां हैं जी। तो वो कह रहे हैं जी कि और डिटेल्स हम आपको वीकेंड के ऊपर देंगे, और हम हमें लग रहा है कि हम बहुत सारे अग्रीमेंट्स करेंगे। मतलब अग्रीमेंट की करना कहना पायन, तू इतना अमीर वड्डा पराए पैसे दे सानू, साड़ी हालत इतनी खराब है, क्योंकि टर्की में भी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गई और फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरी है,
और उनका फॉरेन एक्सचेंज
काफी कम हो गया ना, तो बिल्कुल ही वो लीरा तो बिल्कुल लीर हो गया ना जैसे वो। अच्छा तो ये जो है ना इनका बड़ी हालत खराब है इनकी, तो उन्होंने तुर्की वालों ने कहा जी कि अब ये सड़ा परा रहे हैं, तो ऐसी इसके नाल मुहब्बतें बतावांगे, तो अब देखो जी कैसे बढ़ती हैं। अल जजीरा की आज फिर से एक रिपोर्ट आई है कि 3 पैलेस्टीनियंस को जनीन के एरिया में उसने इसराइल के सोल्जर्स ने मारा है, और वो एक गाड़ी में जा रहे थे ये 4 लड़के, और उनके ऊपर जो है अटैक किया है इसराइली। ये देखें जी, जो हमारा टीवी देख रहे हैं वो देख सकते हैं, इनकी गाड़ी के ऊपर अटैक किया, 3 लड़के जो हैं उनकी डेथ हो गई, एक जो है बहुत ही ज्यादा सीरियसली इंजर्ड है। ये अल महारा का एरिया था, लेकिन लोगों ने पैलेस्टाइन में कहा कि इनको जानबूझ के मारा गया है क्योंकि ये इसराइल के खिलाफ नारे लगाते थे। इसराइल आर्मी ने कहा कि नहीं, हमको इनकी गाड़ी से जो है वेपन्स मिले हैं, 2M116 असॉल्ट राइफल्स थी, कार्ट्रिजेस थे और बड़ा कुछ वेपन्स थे, तो इसलिए हमने इनको रोका था, ये रुके नहीं थे तो फिर इनके ऊपर जो है फायरिंग करनी पड़ी। तो बहरहाल जी, अब ये यहाँ पे भी, तो यहाँ पे क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी नहीं लोगों को नजर आ रहे दुनिया को, है ना। ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, पैलेस्टीनियंस को मारना क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी नहीं है। तो बस जी, इसके ऊपर सारी दुनिया चुप बैठी है, हालांकि हर दूसरे या तीसरे दिन अल जजीरा वाले रिपोर्ट करते हैं। अच्छा जनाब, 4 जो यूरोपियन लीडर्स हैं उन्होंने आज फिर से एक दफा से कहा है कि अगर जो यूक्रेन है वो यूरोप का हिस्सा बनना चाहता है, यूरोपियन यूनियन का, तो हम उसको जो है फैसिलिटेट करेंगे। और उन्होंने फिर से कहा, पाया नसी थोड़े नाल खलोते हैं, डरना नहीं है, लड़ते रहो मरते रहो, है जी, रशिया के खिलाफ। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों जो है उन्होंने आज सबसे पहले 6 मोर टैंक माउंटेड आर्टिलरी गन्स इनको दिए हैं और उन्होंने कहा है कि फ्रांस, जर्मनी, इटली, रोमेनिया, हम सब आपके साथ खड़े हुए हैं। और उन्होंने कहा कि जर्मनी के साथ हमारे बहुत सारे वखरेवे थे सेकंड वर्ल्ड वॉर में, आपको पता ही है, लेकिन अब हम एक पेज पे हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे अगेंस्ट रशिया। जो जर्मनी के वाइस चांसलर हैं शोल साहब, उन्होंने भी कहा कि हम आपको डिक्टेट तो नहीं करेंगे टर्म्स कि आपने कैसे आगे मूव करना है या आपने अगर पीस की तरफ भी जाना है तो कैसे जाना है, लेकिन ये हम आपको बता सकते हैं कि जी हम आपके पास खड़े हुए हैं। इटालियन प्राइम मिनिस्टर मारियो ड्रैगी जो हैं उन्होंने कहा जी कि ये बड़ा मसला और क्राइसिस पैदा हो गया है इस लड़ाई की वजह से, ब्लैक सी पोर्ट्स जो हैं उनसे चूंकि ग्रेन नहीं आ रहा है तो ये बड़ी वर्ल्ड वाइड कैटास्ट्रोफी आने वाले दिनों में और बढ़ जाएगी। और इटली इसलिए भी डरता है क्योंकि जब भी कभी दुनिया के किसी हिस्से में लड़ाइयां होती हैं ना, तो बेचारे इटली के अंदर सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स जो है वो आ जाते हैं इधर उधर से। तो वो कहते हैं जी कि अफ्रीकन कंट्री से खासतौर पर, वो कहते हैं अगर अफ्रीका के अंदर हंगर बढ़ी तो और अफ्रीकन जो है इटली में आ जाएंगे,
पूरे यूरोप में आएंगे।
तो ये बड़ा उनके लिए है, लेकिन इन्होंने जो है ना रोमेनिया और इटली जो है वो सॉफ्टली, तो वैसे जर्मन चांसलर ने भी बात की है, लेकिन इन दोनों ने तो खुल के बात कर दी है कि आप अगर, यानी उन्होंने कहा है कि ये, उन्होंने बड़े प्यारे तरीके से बात की है कि ये आप डिसाइड करें कि आपको पीस की तरफ किस तरह जाना है, यानी वो अब आपको कह रहे हैं कि भाई पीस की तरफ जाने की कोशिश करो। तो पाया फिर उसको, उनको लड़ाया क्यों, बेचारों को मरवाया क्यों?
प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो है उसके फेवर में नहीं है।
हाँ, उसके फेवर में नहीं है जी, वो कहता नहीं मैं मरांगा मरवावांगा अपने बंदे, जिस वे अधिक और ज्यादा पॉपुलेशन मर जाएगी फिर मैं सोचांगा हूं मैं पीस करना है कि नहीं। बहरहाल जी, उन्होंने यही कहा कि आपकी मर्जी है अगर आप पीस की तरफ जाना चाहते हो कि नहीं। बहरहाल उन्होंने अब हिंट्स देने शुरू कर दिए हैं क्योंकि इनकी हालत जो है ना माजद भाई पतली होती जा रही है। आपको पता ही, हमने यहां पे पीपल इफ दे कैन रियली रीड बिटवीन द लाइंस जो हम खबरें यहां पे दे रहे हैं कि कैसे रशिया और चाइना का और ज्यादा अलायंस होता जा रहा है। उन्होंने अगर अपनी ये जो आपको चेन सप्लाई की जो चीजें हैं जो आपको आती हैं उसके अंदर वो रोक दी तो आपका तो सारा यूरोप बिल्कुल जमीन के ऊपर आ जाएगा। तो और उसने तो चाइना ने कहा है कि पायन मैं थोड़े पीछे खड़ा हूं रशिया के, जो तुम्हारा जो नुकसान यूरोप से हो रहा है वो सारा मैं खरीदने को तैयार हूं तुमसे, क्योंकि यूरोप तो वैसे ही चाइना को दीवार से लगा के बैठा हुआ है। चाइना ने कहा ठीक है मैं उनसे नहीं लूंगा, मैं तुमसे लूंगा चीजें, राइट। तो इनको तो कोई नुकसान नहीं है भाई, नुकसान तो आपको ही है। अच्छा जी, यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इन्होंने जाना था डॉनकास्टर के एरिया में नॉर्दर्न इंग्लैंड के अंदर और लोग वहां पर इंतजार कर रहे थे, तो इनसे 10 डाउनिंग स्ट्रीट से एक स्टेटमेंट आई और उन्होंने कहा जी कि बोरिस जॉनसन तो यूक्रेन पहुंच गए हैं। है जी, पायन जड़ा ना ना भी कुछ समझ नहीं आंदी। है जी, उधर इवेंट तैयार किया हुआ है उसके लिए 10 डाउनिंग स्ट्रीट ने हामी भरी हुई है और अचानक पता चला जी प्राइम मिनिस्टर, आई मीन नॉट जस्ट एनी एमपी इन द गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर साहब उधर पहुंच गए हैं जी यूक्रेन, एंड दिस वाज अ सरप्राइज विजिट। इसका कोई जो है वो 3-4 महीने से वो जो करते हैं ना वो वैसा नहीं था, ये वहां पे पहुंचे हुए थे और ये कह रहे हैं जी कि हम यूके आपके लिए बहुत बड़ा काम कर रहा है क्योंकि हम आपके जो है 10,000 सोल्जर्स जो है के करीब हम उनको ट्रेन कर रहे हैं और यही सोल्जर्स जो है आपके लिए लड़ेंगे और मरेंगे। हैं जी, हम ट्रेनिंग देते रहेंगे, आप मरते जाओ। तो ये जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, तो उसके लिए मैं इधर आया हूं। तो उसने कहा जी कि मेरा मैसेज बड़ा क्लियर है आपको कि आपके पीछे जो है यूके खड़ा हुआ है, वी आर विद यू। ठीक है जी, तो ये जनाब हुई हैं बातें। और प्रीति पटेल की तो जो होम सेक्रेटरी हैं उनकी बात आरफा जी ने बता दी है कि ये जो है इनको जूलियन असांज साहब जो हैं इनको, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा बस यही ऐड करना चाहती हूं कि इनके लिए उसने कहा था जूलियन असांज और उसके लॉयर ने एक दफा कहा था कि ये यूएस के अंदर जो आप इनको भेज रहे एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के अंडर, वो इसकी सेहत बहुत ज्यादा खराब है और हो सकता है ये उसको मार भी दें वहां पे। और ये ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अगेंस्ट है. तो उसने कहा, तो यूके की गवर्नमेंट ने और कोर्ट्स ने कहा कि ये कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और उसके खिलाफ नहीं है, ये हमारा उनके साथ ट्रीटी हम आपको कर रहे हैं. और हमें यूएस जो है वहां पे अथॉरिटीज, उसने कहा है कि वो आपकी सेहत का भी ख्याल रखेंगे. और वो भी उन्होंने क्या पाया नहीं दफा हो सही तुम फिर दसने असी कितना थोड़ा ख्याल रखने है जी. तो बहरहाल ये बातें ही हैं, जाहिर है ये बातें हैं. अच्छा जनाब, आज फिर से एक बार अमरीका के अंदर एलोबामा के जो एरिया के अंदर वहां पे एक चर्च में लोग वहां पे एक, यानी आप सोचें कि एक एंजॉयमेंट का वो माहौल था वहां पे. वहां पे हो रहा था एक, कर रहे थे वो लंच सा कर रहे थे, है ना, फेस्टिवल चल रहा था, फंड रेजर ही चल रही थी वहां पे. लोग जो थे जमा हुए थे, तो वहां पे शूटिंग हुई. एक आदमी है उसने शूट किया, उसके अंदर एक 84 इयर्स का आदमी और एक औरत 75 इयर्स की, उसकी डेथ हो गई और एक आदमी वुंडेड है. तो ये शूटर जो है ये भी, इसकी अपनी खुद की उम्र भी 71 इयर्स है, कोई इतना छोटा नहीं है ये. तो इसको भी बहरहाल जी उन्होंने पकड़ लिया है. ये जो एरिया है, ये जो चर्च है, ये बर्मिंगम स्पर्ब है, वेस्टेविया हिल्स के पास ये वहां पे था. तो प्रोसिक्यूटर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि जाहिर है कि डेफिनेटली इसके ऊपर कैपिटल मर्डर के चार्जेस लगाएंगे. इसने अचानक से वहां पे गया, गन निकाली और वहां पे वो जो फंड रेजर और जो वो चल रहा था, यानी आप उसको सफर कह सकते हैं, अर्ली आवर्स में वो चल रहा था, कुछ कहते हैं डिनर, लेकिन डिनर तो नहीं था वो, यानी अभी सूरज निकला हुआ था. तो वो अर्ली फेस्टिविटीज चल रही थी, तो वहां पे इसने जो है वो शूटिंग किया. तो उसमें लोग जो है इस तरह, तो अब कॉन्स्टेंटली आप देखें ये शूटिंग की जो है ये वारदातें चल रही हैं अमरीका में,
बढ़ती चली जा रही है.
अच्छा जी, कल जो था थर्सडे, उसको वो थर्ड डे था, ये जो जनवरी 6 का वो जो कैपिटल हिल में जो राइड्स हुए थे अमेरिका में, उसका कल थर्ड डे कांग्रेशनल जो हियरिंग थी वो चल रही थी. और कल का जो फोकस था वो माइक पेंस के ऊपर था, जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे उनके, ट्रंप साहब के.
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो.
अगर हो आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर से परेशान, तो कॉल करें मुझे, मेरे मेहरबान बना करके दूंगा आपको ऐसा प्लान कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग हो जाएगी आसान. मसला हो चाहे आपकी मॉर्गेज उतारने का, बच्चों की एजुकेशन का, या आपकी अपनी रिटायरमेंट का, मेरे पास हैं अवेलेबल ऐसे प्लान जो मेक श्योर करते हैं कि आपको मिले अच्छी बचत, लोएस्ट रेट्स, क्योंकि मैं डील करता हूँ तमाम की तमाम इंश्योरेंस कंपनी के साथ. फायदा उठाइए कॉल करके मेरे लंबे एक्सपीरियंस का, 905-607-5000. मैं हूँ फजल वदूद फ्रॉम इंश्योर प्रो फाइनेंशियल सर्विसेज. सी यू सून.
विलेज स्टेज ओंटारियो का सबसे बड़ा पाकिस्तानी बफे 40 से ज्यादा आइटम्स के साथ. एंजॉय करें हमारे डिलीशियस मेन्यू को, कढ़ाई, करीज, बारबेक्यू, बारबेक्यू प्लेटर, रोल्स एंड मच मच मोर. और अब डेली डिनर बफे और वीकेंड ब्रंच बफे भी. पार्टी रूम्स या कैटरिंग सर्विसेज के लिए कॉल 905-232-3663, 647-774-4888. विलेज टेस्ट.
क्या आपको मॉर्गेज के लिए प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है? मॉर्गेज डिलीजेंट के मुकेश चौहान कैन हेल्प. विद 18 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल इंडस्ट्री, ही स्पेशलाइजेस इन मॉर्गेजेस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड. कॉल मुकेश चौहान 6475127000. और अगर आपको बैड क्रेडिट, कंज्यूमर प्रपोजल या बैंकरप्सी जैसे इशू हैं और बैंक ने डिक्लाइन कर दिया है, वेदर यू आर फर्स्ट टाइम होम बायर और नीड रीफाइनेंस और प्राइवेट मॉर्गेजेस, कॉल मुकेश चौहान 6475127000. FSRA 10252. Condition applies.
ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਵੀ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ.
ਹਾਂਜੀ, ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰਿਜ, ਸਟੋਵ, ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ, 3 ਪੀਸ ਕਿਚਨ ਬੰਡਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੰਟ ਲੋਡ ਵਾਸ਼ਰ ਐਂਡ ਡਰਾਇਰ, ਐਨਰਜੀ ਸੇਵਰ, ਐਨਰਜੀ ਸਟਾਰ, ਤੇ ਟੀਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀ, ਸੈਮਸੰਗ, ਪੈਨਾਸੋਨਿਕ, ਸ਼ਾਰਪ, ਹਰ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਟੀਵੀ ਵਿਦ ਦ ਲੋਐਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਨ ਦ ਟਾਊਨ, ਸਿਰਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਤੇ. ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ, 801 Bowie Drive West, Brampton, ya call karo 905-450-2828, 905-450-2828.
जी तो मज भाई, ये मैं आपको बता रही थी. तो कल थर्ड डे था, ये जो हियरिंग चल रही है कांग्रेशनल, इसके ऊपर जनवरी 6 के जो राइट्स हुए थे उसके ऊपर. इसमें जो फोकस है मैंने आपको बताया, ये एक माइक पेंस थे कल, और इसमें बहुत अच्छी बात हो गई माइक पेंस के लिए कि यहां पे जो ट्रंप साहब के लॉयर हैं जॉन ईस्टमैन, वो कह रहे थे जी कि ये बिल्कुल, इनको बहुत दफा ट्रंप साहब ने कहा कि तुम कर सकते हो, तुम वाइस प्रेसिडेंट हो, ओवरटर्न करो ये जो सारा कुछ इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं 2020 यूएस इलेक्शंस के। इसने कहा कि नहीं नहीं मैं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। तो वो आज उनकी तारीफ भी की गई, लेकिन जहां वहां पे एक एक्स जज थे जो कि जिन्होंने के ये कमेटी को बताया कि ट्रंप साहब जो हैं वो बड़ा खतरा है यूएस डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 2024 में फिर से ये और इनके जो एलाइज जो हैं रिपब्लिकन पार्टी में वो सामने आ जाएंगे और ये हमारी डेमोक्रेसी को खराब करेंगे।
ट्रंप साहब जो है वो अपना नॉमिनेशन तो नहीं कह सकते उसको, ही इज अपना ऐलान करेंगे कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं।
हाँ जी हाँ जी।
एंड इट इज नॉट इन वन ईयर टाइम और टू ईयर टाइम, दिस इज द ईयर दैट ही इज गोना अनाउंस इट।
या तो वो वही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये इनको बड़ा खतरा है। और वो कहते हैं कि ये, हालांकि राइटर्स जो थे जब उनको ये बात पता चली कि माइक पेंस जो है ट्रंप का साथ नहीं दे रहा है, तो उन्होंने तो यहां तक नारे लगाने शुरू कर दिए, हैंग माइक पेंस। तो वो कहते हैं कि ये बड़ी खतरे की बात है। बरल जी, आज इनकी जो है जरा फिर छूट हो गई, उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, शुक्र है कोई तो आदमी था उस एडमिनिस्ट्रेशन में जो कि ये इन चीजों को ओवरटर्न करने की कोशिश नहीं कर रहा था, क्योंकि ट्रंप साहब इनको इंसिस्ट कर रहे थे आप करें, अकॉर्डिंग टू द लीगल एडवाइजर्स इन अमेरिका आप जो है कोई आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन आपको पावर्स नहीं देता ओवरटर्न करने का, अनलेस एंड अनटिल कहीं से बेईमानी की खबर आए। तो बेईमानी की खबर कहीं नहीं आ रही थी, और वो कहते हैं ट्रंप साहब को सब बता रहे थे कि एवरीथिंग हैज गॉन फेयरली एंड ट्रांसपेरेंटली, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। तो
आज भी मानने को तैयार नहीं।
आपको
पता है 30% ऑफ अमेरिकन दे आर इन फेवर ऑफ
ट्रंप साहब
के लिए कि यस इसमें
बेईमानी हुई थी,
धांधली हुई थी एंड उनको गलत तरीके से हरवाया गया।
हाँ जी। अच्छा जनाब, इंडियन एक्सप्रेस की आज ये एक न्यूज है, और इंडियन एक्सप्रेस की इस न्यूज के मुताबिक नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो है इंडिया के अंदर, उन्होंने कुछ चैप्टर्स जो हैं ग्रेड 12 में से पॉलिटिकल साइंस के करिकुलम से हटा दिए हैं, ये कह के कि पेंडेमिक की वजह से लोगों के ऊपर और बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ है। ये पेजेस 187-189 जो कि गुजरात राइट्स पे थे वो हटाए गए हैं, नेक्सलाइट मूवमेंट जो पेज 105 पे थी वो हटा दिया गया है, जो नई किताबें अब आई हैं, कंट्रोवर्सीज ऑन इमरजेंसी पेज 113-217 ये सारा कुछ निकाल दिया गया है। और इसमें उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है कि ये चीजें एक तो आजकल के जमाने में रेलिवेंट भी नहीं है, और ये अननेसेसरली रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हवा देती हैं, और पॉलिटिशियंस अपने पॉलिटिकल एम के लिए इसको खर्च करते हैं। हालांकि किताब के साइड पे एक ब्लर्ब है जो कि दिया गया है, विच इज अ स्टेटमेंट ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी, जिसमें के अंदर उन्होंने वो कह रहे हैं मोदी जी को जो कि उस वक्त गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, कि चीफ मिनिस्टर जो होता है उसका काम राजधर्म है, उसको डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट क्रीड रिलीजन नहीं करना चाहिए। तो अब ये जो एक्सपर्ट्स हैं एजुकेशन के वो कह रहे हैं जी कि अगर ऐसी बात है फिर तो गालिब भी ना पढ़ाओ, और फिर तो आप जो है मीर को भी ना पढ़ाओ, और फिर तो अपनी जो हिंदुस्तान का पार्टीशन है उसको भी ना पढ़ाओ, क्योंकि वो तो अब किस चीज का पार्टीशन होना है फॉर एग्जांपल, तो ये तो रेलेवेंट ही नहीं है, फिर ना पढ़ाओ। फिर आप जो कह रहे हो कि जी मुगल्स को हटा के उनकी हिस्ट्री को अपने शहनशाहों की हिस्ट्री जो है उसको लगाओ, तो फिर वो हिंदू शहनशाहों की हिस्ट्री जो है वो कैसे रेलेवेंट है आजकल के जमाने में। असल में हुआ क्या था, अगर आपको पता है 2002 में गुजरात राइट्स शुरू कैसे हुए थे, कि वहां पे एक ट्रेन थी, उस ट्रेन के अंदर जो थे 58 हिंदूज जो थे वो जल के मर गए थे, और उसमें जब प्रोब की गई थी तो पता चला था कि वो कुछ खाना बनाने की कोशिश कर रहे थे और एक सिलेंडर फटा था और उसकी वजह से मरे थे। बहरहाल उनको जब वो जल के मरे तो उनका पूरे का पूरा ब्लेम मुस्लिम्स को दे दिया गया था कि इन्होंने जान बुझ के मुसलमानों को मारा है। हालांकि ये भी रिपोर्ट आई थी कि कोई मुसलमानों का लेना देना नहीं था उसमें, लेकिन फिर भी वो जो उसके अंदर मुसलमानों को मारने की कोशिश की गई थी, एंड अकॉर्डिंग टू जो रिपोर्ट्स इंडिया की खुद का जो डाटा आया था उसके मुताबिक जो है 1000 लोग जो थे उनको मार दिया गया था, 200 पीपल वेंट मिसिंग, 2500 वर सीरियसली इंजर्ड, कुछ को लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज आ गई थी। और इसको फिर जो स्कॉलर्स थे इंडिया में उन्होंने इसको जीनोसाइड का नाम दिया था कि ये मुसलमानों का जीनोसाइड जो है वो किया गया है, और एक एसआईटी की एक प्रोब बिठाई गई थी, और उस प्रोब ने एलिजली मोदी जी को किया था ब्लेम किया था, लेकिन फिर जब फर्दर इन्होंने और प्रोब कराई तो उन्होंने कहा जी कि नहीं, मोदी जी का इसके अंदर कोई हाथ नहीं है, जो कि चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त गुजरात بات کے. تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ پارٹ آف ہسٹری ہوتی ہیں, یہ آپ کیسے ان کو ہٹا سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی نہیں, بچوں کے اوپر بڑا ہی بوجھ ہے تو ہٹا دیں. پی ٹی آئی کی ایک رپورٹ ہے, دس از پریس ٹرسٹ آف انڈیا, پی ٹی آئی, یہ جو ان کی وائر ایجنسی ہے اس کی یہ ہے. انہوں نے کہا جی آج پھر سے ایک دفعہ یو ایس گورنمنٹ میں جو ان کے اسپوکس پرسن ہیں وائٹ ہاؤس میں نیڈ پرائس, وہ آج رپورٹرز کے ساتھ بات کر رہے تھے اور آج انہوں نے پھر سے ایک بار جو ہے یہ پروفیٹ محمد پیس پی اپون ہم ان کے خلاف جو گستاخانہ باتیں کہی گئی ہیں بی جے پی کے دو لیڈرز نے انڈیا کے اندر, اس کے اوپر انہوں نے اوفینسو لیتے ہوئے کہا کہ ہم ہر وقت, ذرا سینٹنسز دیکھیں ذرا ان کے نا امریکن گورنمنٹ کے, ہم ہر وقت انڈیا کے ساتھ انگیج کرتے ہیں, ہم ان کو ہر وقت کہتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کا ریسپیکٹ کریں, ہمارے اور ہندوستان کے بڑے شیئرڈ آئیڈیاز ہیں جس کے بارے میں ہمارے یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ اینتھنی بلنکن صاحب جب نیو دہلی گئے تھے تو انہوں نے بتایا تھا کہ ہماری ڈیموکریسیز ہیومن ڈگنیٹی ہیومن ریسپیکٹ اور اکوالٹی اور گڈ اپرچونٹیز ریلیجیس فریڈمز اینڈ بلیفس کے اوپر بلیو کرتی ہیں, تو ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ یہ کرتے رہیں.
ٹھیک
ہاں, تو یہ اعتراض کیا انڈیا میں,
انکریج کریں,
ہاں یہ اعتراض کیا انڈیا کے اوپر ہے جی. تو یہ انہوں نے کہا جی ہاں ہم بڑے کنسرن ہیں کہ انہوں نے رسول کے خلاف بڑی خراب باتیں کی ہیں, لیکن ہم نے ان کو کہا جی ہم شیئرڈ ویلیوز ہمارے ہیں تو ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو کریں. تو وہاں پہ خود ہی انڈیا کے اندر ہی اس کا ریئیکشن بہت سارا ہے, اگر آپ آج سوشل میڈیا ٹویٹر وغیرہ دیکھ رہے ہیں, حالانکہ ہم تو نہیں فالو کرتے لیکن لوگوں کا کافی سارا غصہ, جس کے اندر بہت سارے جو ہیں ہندوز ہیں اور وہ بھی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہندوستان کا سوشل فائبر آپ خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ حرکتیں نہ کریں اس ملک کو جو سیکولر لائنز پہ تھا, کیونکہ ظاہر ہے آپ کی نفرت ہے نہرو کے ساتھ, تو اگر آپ نہرو سے نفرت کرنے کے چکر میں سارے ہندوستان کا میک اپ ہی اگر آپ برباد کر دیں گے تو پھر ملک کیسے چلے گا, ان کا یہ کہنا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ نہرو کے جو پرنسپلس تھے یا گاندھی کے جو پرنسپلس تھے کہ یہ سیکولر کنٹری رہے گا, ریلیجس ٹالرنس اس میں ہوئے گی, اس پہ آپ قائم رہیں. تو بہرحال جی یہ جی یہ جی انہوں نے بڑا غصہ کیا امریکہ نے انڈیا کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. اچھا جناب, دا پرنٹ کی آج ایک اسٹوری ہے, اینڈ دس اسٹوری از ریٹن بائی رجینا مہندی وکلو سوریا.
ویری گڈ نیم,
او مائی گاڈ کتنا مشکل نام ہے, لیکن دیکھیں واہ جی شاباش ملک صاحب کیا نام لیا آپ نے. جی اچھا جی, ان کے مطابق جو ہے تین لوگوں کو آج, اور یہ سیریس رپورٹ ہے, بہت سیریس رپورٹ ہے, تین لوگوں کو جی یہ جو بھیما کورے گاؤں کا جو کیس تھا اس کے اوپر ان کو پکڑا گیا تھا. اچھا اب یہ لوگ کون تھے, ذرا لوگ دیکھیں آپ, یہ لوگ تھے ایکٹیوسٹ رونا ولسن, پوئٹ وراورا راؤ, دہلی یونیورسٹی کے پروفیسر ہنی بابو, ان کو پکڑا گیا اور ان کو جیل میں ڈالا گیا. کیونکہ ہوا کیا تھا یہاں پہ کورے گاؤں کے اندر, کہ یہاں پہ کچھ ٹرائبلز جمع ہوئے ہوئے تھے اور وہ جو ہیں یہاں پہ ایک سیرمنی کچھ منا رہے تھے جس کو کہ پھر وائلنٹ وہ ہو گئی تھی, اور اس کے اندر جو پریسٹ سٹین سوامی تھے ان کو مار دیا گیا تھا, اور ان کو کہا گیا تھا کہ یہ آپ نے جو سارا کچھ وائلنس ہے اس کے اندر ہم نے لوگوں کو پکڑ لیا ہے اور ان کو پکڑا. اس کے اوپر آج جو یو ایس سائبر سیکیورٹی کی فرم سینٹینیل ون, جو کہ آپ لاس ویگس میں اگست میں جا کے سارا اس کورے گاؤں کیس کا جو کچا چٹا کھولے گی, وہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں جی پونے پولیس کے اندر کچھ لوگ تھے جنہوں نے کہ ان کے سسٹمز ہیک کیے, کیونکہ یہ پسند نہیں تھے, کیونکہ یہ بی جے پی کی گورنمنٹ کے اگینسٹ بولتے تھے, ان کے سسٹمز کو ہیک کیا, ان کے نام سے ای میلیں بنائی, ان کے نام سے سوشل میڈیا کے اوپر انتشار پھیلایا اور کہا جی کہ یہ لوگ ہیں جو کہ یہاں پہ جو ہے وہ لڑائی جھگڑے اور وائلنس بڑھا رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ سارا جو کیا دھرا تھا یہ پونے کی پولیس نے کیا تھا, اور یہ ٹیک میگزین وائڈ جو ہے اس کے اندر یہ ساری رپورٹ آئی ہے. اور وہ کہتے ہیں جی کہ یہاں پہ ایک انہوں نے کینیڈا سے یونیورسٹی آف ٹورنٹو کے پروفیسر ہیں, سیکیورٹی ریسرچر ہیں بلکہ, جان سکاٹ ریلٹن, جو کہ سٹیزنز لیب کا بھی حصہ ہیں, آپ کو پتا ہی ہے جو کہ سارے یہ الیگیشنز وہ سامنے لے کر آتی ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ ان لوگوں نے الیجڈلی, مجھے لگتا ہے کہ وہ جو اسرائیلی کمپنی این ایس او کا پیگسز ہے اس کو امپلوائے کر کے ہیک کیے ان کے سسٹم, اور ان کے سسٹم سے غلط باتیں شائع کرائیں اور رانگلی ان کو امپلیکیٹ پھر کروایا اور ان کو پکڑوایا. تو دس از بیکمنگ ریئلی سیریس. تو یہ انڈیا میں ایک دفعہ سے پھر سے یہ اب چل پڑی ہے جو ہے بات, کہ یہ پیگسس جو ہے یہ کس کس نے لیا, کیوں لیا, ان کو ایکسس کیوں دی گئی, اور یہ کیسے استعمال ہو رہا ہے بھائی. تو کیونکہ یہ تو صرف گورنمنٹس کے لیے ہونا چاہیے, تو یہ لوگوں کے پاس کیسے آ رہا ہے, یعنی کہ یہ پونے پولیس کے پاس کیسے آ رہا ہے. अच्छा जनाब अरफा बाजी ने आपको ये थोड़ा सा बताया है, ये जो अग्निपथ का जो हमने आपको परसों से हम बता रहे हैं कि उसकी वजह से काफी राइट्स हो रहे हैं ये इंडिया के अंदर, तो आज काफी सारे मैं कुछ चीजें बस ऐड कर दूं कि बहुत बड़े पैमाने पे अब जो है ये मैसिव अब शुरू हो गए हैं। जो हमारा टीवी देख रहे हैं वो देख सकते हैं किस तरह जलाओ घेराओ हो रहा है यहां पे बिहार यूपी तेलंगाना मध्य प्रदेश हरियाणा राजस्थान दिल्ली के अंदर जो है 300 जो ट्रेन्स हैं वो अफेक्ट हुई हैं। यहां पे बहुत सारे पुलिस स्टेशन्स को अटैक किया गया है और रेलवे की प्रॉपर्टी जलाई गई है, पटड़ियां उखाड़ी गई हैं और बच्चे कह रहे हैं कि जी हमको अगर हम जो है नेक्स्ट स्टेज में नहीं जाएंगे तो 23-24 साल की उम्र में ही हम फिर से अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। यानी 3 साल के लिए हमको मिलिट्री जो है वो एम्प्लॉय कर रही है, बस अगर हम अच्छे ना हुए और हम नेक्स्ट उस पर ना जा सके अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंडर्ड्स तो 4 साल के बाद फिर से हम वही जीरो पे आ जाएंगे, हमारे पास कोई जॉब नहीं। तो ये काफी मैसिव जो है यहां पे चल रहे हैं और पुलिस जो है काफी इनके ऊपर डंडा वंडा भी चला रही है, तो अब देखेंगे ये कहां जाएंगे। लेकिन ये जो यूनियन रेलवेज मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने कहा है कि भाई आप लोग शांति बनाए रखो। भैया पायन शांति कैसे बनाए रखो है ये पाकिस्तान के अंदर जनाब जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने अब बहुत बड़ा एक फैसला किया और ये उन्होंने कहा जी रात 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक जो है कोई बिजली नहीं होगी। और हाँ जी, तो ये हम सिर्फ 3 घंटे के लिए कर रहे हैं, बाकी दिन में हम आपको बिजली दे रहे हैं। कमर्शियल जो एंटिटीज है ना उनको कहा है को नहीं करेंगे। तो ये आज सारे चीफ मिनिस्टर जो थे यहां पे आए हुए थे और ये नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल जो है इसने डिसाइड किया है और ये जो है इन्होंने डिसीजन लिया था जून 7 से, लेकिन बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स ने कहा था हम ट्रेडर्स जो है उनसे पूछ के करेंगे। बहरहाल ट्रेडर्स तो अभी भी खुश नहीं है, बट दे हैव सेड के भाई प्लीज अब गो अहेड, अब क्या कर सकते हैं। अच्छा जनाब, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF जिसका कि हम अभी जिक्र भी कर रहे थे, हुआ यह है कि पाकिस्तान को कहा गया था कि बहुत सारा टेरर फाइनेंसिंग आप कर रहे हैं और बहुत सारी मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं और ये सारे आपको चीजें खत्म करनी पड़ेगी। इसकी प्लेनेटरी जो है वो हो रही थी, मीटिंग आज हो रही थी और ये इसके अंदर हाइब्रिड मीटिंग भी कुछ चल रही थी, तो ये जर्मनी के अंदर ये चल रही है और पिछले 2 साल से जो है ये इनको मॉनिटर कर रहे थे पाकिस्तान को और पाकिस्तान को कहा था कि आपने ये कुछ चीजें 34 क्लॉजेस कही थी। तो आज इन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया कि पाकिस्तान ने तमाम की तमाम चीजों को खत्म करने की कोशिश की है, जो टेरर फाइनेंसिंग है उसकी इन्वेस्टिगेशन बिठाई है, प्रोसिक्यूशन किए हैं बहुत सारे जो टेररिस्ट ग्रुप्स थे उनके और जो है मनी का,
ये सारा 2 महीने के अंदर कर दिया।
हाँ हाँ मजा ये 2 महीने में, क्योंकि आज शहबाज शरीफ ने आपको मैंने आपको बताया ना उन्होंने ये सारा इसका कहा कि ये बड़ी खुशी की खबर है और खुशी की खबरें हम देंगे आपको आने वाले दिनों में, है जी। तो ये जी है और इसके अंदर पाकिस्तान ने ये वाकई मनी ट्रेल्स जो है इनको फॉलो किया है और ये जो बहुत ज्यादा ग्रेट इन्होंने प्रोग्रेस दिखाई है। मार्च के महीने में जब हम कर रहे थे तो 2 पॉइंट्स लेस थे और अब जो है ये पूरे पॉइंट्स हो गए हैं। एज अ रिजल्ट वी आर टेकिंग पाकिस्तान आउट ऑफ ग्रे लिस्ट, इससे पाकिस्तान के लिए ईज ऑफ बिजनेस जो है अब पैदा होगी। इस न्यूज के आने के बाद जाहिर है कि इमरान खान साहब ने उन्होंने बड़ी शाबाशी दी क्योंकि उन्होंने कहा जी कि मैंने अपने जमाने में 2018 में ये कमेटी बिठाई थी जब हमें FATF ने कहा कि आपको हम नहीं निकालेंगे उसकी ग्रे लिस्ट से, तो उस वक्त मैंने एक कमेटी बिठाई थी, उसका हेड बनाया था हमाद अजहर को और उसके अंदर जो थे बहुत सारे और भी सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग थे, दूसरे बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स और ऑफिशियल्स थे जिन्होंने के दिन रात काम किया था। इमरान खान साहब का कहना है कि उन्होंने ना दिन देखा ना रात देखा, तो आज उन्होंने बहुत ज्यादा शाबाशी दी ना सिर्फ हमाद अजहर को बल्कि उस पूरी टीम को, सारे ऑफिसर्स को जो कि इनके साथ काम, उन्होंने कहा जी यू हैव performed exceptionally well and the whole country is proud of you, no shock about this, बिल्कुल we are proud of you भाई, बहुत अच्छा काम किया। राव अनवर साहब, आपको पता ही है बहुत ही नोटोरियस पुलिस ऑफिसर थे कराची के, उसकी भी थोड़ी सी बात अरफाबाजी ने की है, थोड़ा सा कुछ मैं और इसके अंदर एड करूंगी कि इसने कहा जी कि जिस वक्त ये सारा मसला बीबी का आया तो यहां पे जो लोग इसमें, क्योंकि आपको पता ही है कि ये इसकी बात पे लोग कमी करते हैं राव अनवर की बात पे, क्योंकि 400 लोगों के इसने फेक पुलिस एनकाउंटर्स किए थे और बहुत ही क्लोज है ये जरदारी साहब के, तो बहुत सारे अलजली सुना है कि ये गलत काम भी करता रहा उनके लिए। तो बहरहाल जी ये कहते हैं जी कि ये जो बीबी की को मर्डर किया गया था December 27, 2007 में एक सुइसाइड बॉम्बिंग में पिंडी के अंदर, तो उसके अंदर जो मेन सस्पेक्ट था वो इकराम महसूद था जो कि इंचार्ज था ऑपरेशन का और बैतुल्ला महसूद जो था उसको मास्टरमाइंड कहा गया था, लेकिन एक और टेररिस्ट ग्रुप था जो कि विच वाज लेड बाय तैयब महसूद जो इसको कर रहा था जो कि इन्वॉल्व था इसके अंदर। अच्छा वो कहते हैं जी कि इसने अब 3-4 बातें कही हैं। इसने कहा जी कि मुशर्रफ साहब को मुझे जोर दिया गया था, जो कि अरफाबाजी ने भी बताया है कि तुमने उसका नाम लेना है, वरना उसका कुछ लेना देना नहीं था। बीबी की जो सिक्योरिटी का इंचार्ज था وہ رحمان ملک تھا. تو رحمان ملک کو پی 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 کی گورنمنٹ میں ایک تو انٹیریئر منسٹر بنا دیا گیا, اس کو کیوں پروب نہیں کیا؟ پھر یہ جو اکرام محسود, بیت اللہ محسود اور یہ طیب محسود تھے, پی 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 کی گورنمنٹ جب آئی تھی ان ساروں سے جواب مانگ سکتی تھی, لیکن کیوں نہیں پی 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 کی گورنمنٹ نے جواب مانگے, ان سے کیوں نہیں مانگے جو کہ مین جو گورنمنٹ نے کہا تھا کہ یہ کلپرٹس تھے, یہ کلپرٹس تھے. اس کے علاوہ بہت بڑی جو آج اس نے ریولیشن کی ہے راؤ انور نے, اس نے کہا جی بی بی کے پاس دو بلیک بیری فونز تھے, وہ دونوں اس کی ڈیتھ کے بعد غائب ہو گئے. اور پھر مجھے بعد میں پتا چلا کہ وہ دونوں فونز جو ہیں وہ یہ رحمان ملک کے پاس ہیں, کیونکہ جس وقت میں زرداری صاحب کے پاس گیا تو میں نے کہا جی مجھے پتا چلا کہ ان کے پاس فون تھے, وہ فون کہاں ہیں؟ تو اس نے مجھے کہا زرداری صاحب نے کہ جی وہ رحمان ملک کے پاس ہیں. تو پہلے تو کہتا ہے میں جب اس کے پاس گیا تو اس نے تو بالکل ہی ڈینائی کر دیا کہ نہیں نہیں میرے پاس تو وہ فون نہیں ہے, مجھے نہیں پتا. پھر کہتا ہے بڑا یہ غصہ ہو گیا کہ تم زرداری کے پاس کیوں گئے ہو, تم نے اس سے یہ کیوں فون مانگے ہیں, تم ڈائریکٹلی میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ تو راؤ انور کہتا ہے جی مجھے تو پتا ہی نہیں تھا, میں تو ان سے انکوائر کرنے کیا تھا, کیونکہ اس کے اندر بہت ساری چیٹس اور باتیں جو تھیں, وہ جو بی وی ایم آپ کرتے تھے اس کے اندر, تو وہ کہتے ہیں اس سے ہمیں پتا چل سکتا تھا کہ واٹ واز گوئنگ آن ایون ایٹ دا لاسٹ مومنٹ, کہ کس کے فون کالز آ رہے تھے, کون ان کو انسٹرکشن کوئی دے رہا تھا, کیا کر رہا تھا. اچھا کیونکہ بی بی جو تھی, اچھا ان سے پھر پوچھا گیا اس وقت راؤ انور سے اس انٹرویو میں کہ اس وقت بی بی نے ایک لیٹر لکھا تھا کہ اگر میں مری یا مجھے کچھ ہوا تو اس میں مشرف, چودھری پرویز لائی اور بریگیڈیئر اعجاز شاہ شامل ہوئیں گے. یہ اگین بہت بڑی ریولیشن ہے راؤ انور کی. اس نے کہا جی اس طرح کی کوئی چیز جو ہے ہمارے سامنے نہیں آئی, کوئی سبسٹینشل ایویڈینس نہیں ہے کہ بینظیر نے اس طرح کا کوئی لیٹر لکھا تھا, کوئی ایسا مجھے نہیں یاد ہے کہ کوئی لیٹر اس نے لکھا تھا اس طرح کی جس میں کہ ان کو اس نے الزام دیا ہوئے. تو یہ کنکوکٹڈ سٹوری ہے فار ایگزامپل. پھر وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو تھا شہنشاہ حسین, یہ جو کی وٹنس تھا اس وقت, اس کی طرف سے آپ نے بلائنڈ آئے کیوں کر لیا, اس کو آپ نے پی 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 کی گورنمنٹ نے کیوں نہیں بلایا, کیوں کوشچن ہی نہیں کی, بس ایسے ہی وہ مطلب ہے ایک کاروائی ڈالنے کے لیے بلایا اور پھر اس کو چھوڑ دیا, اس کے اوپر کچھ نہیں وہ کیا. تو یہ جو تھا اس وقت پوسٹڈ تھا گدب سٹی پولیس اسٹیشن کے اندر, اور جو وہاں پہ جی آئی ٹی بنائی گئی تھی کہ جی پروب کرو بی بی کی مرڈر جو ہے اس کا یہ حصہ تھا. تو اب اس سے پوچھا گیا کہ بھائی اب تم کیوں بول رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے جی کہ مجھے پتا چلا ہے مشرف صاحب کی حالت بہت خراب ہے, تو اس سے پہلے کہ وہ مر جائیں اور میں بھی مر جاؤں میں اپنا کانشس کلیئر کرنا چاہتا ہوں, مشرف صاحب کا کچھ لینا دینا نہیں ہے. بارہ جی پی پی کے لیڈر جو فرت اللہ بابر صاحب ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے اور میں تو اس کا جواب جو ہے صرف اپنی لیگل ٹیم سے بات کرنے کے بعد جو ہے آپ سے بات کروں گا, اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس کو سمپتی اب آ گئی ہے مشرف صاحب کے اوپر کیونکہ وہ مر رہے ہیں, تو اس لیے یہ کہتا جی کہ میں اس کو بچا لوں. لیکن یہ کیوں بچانا چاہے گا؟ یہ اس کے چچے کا بیٹا ہے, یہ تو تم لوگوں کے کلوز ہے نا, یہ تو پی 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 کے کلوز ہے, یہ تو تمہارا بندہ ہے, تمہارا ہٹ مین تھا, یہ تمہارے کہنے کے اوپر سارے کام کرتا تھا, یعنی کہ پی 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 کے کہنے پہ. تو وہ بارہ جی یہ آج بڑی ہی شاکنگ جو ہے وہ نیوز آئی ہیں. آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں عطر منلہ صاحب, وہ بہت زیادہ بھڑک گئے کیونکہ وہ بات کر رہے تھے ڈیپٹی اٹارنی جنرل آف پاکستان کے ساتھ. انہوں نے کہا جی یہ تم لوگوں نے کیا تماشا مچایا ہوا ہے, یہ اصل میں کیس سن رہے تھے جو لوگ ڈسپیئر ہو جاتے ہیں, جو مسنگ پرسنس کا کیس ہے وہ یہ کر رہے تھے. انہوں نے کہا تم لوگوں نے کیا اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنائی ہوئی ہے, اور یہ کون جواب دہ ہے؟ تمہاری جو انویسٹیگیشن کی جو ایجنسیز ہیں ٹیم ہے ان کا کام ہے ان لوگوں کو جو ہے وہ کرنا, اور میں نے کورٹ نے بہت کلیئر تم لوگوں کو ڈائریکشنز دی تھیں کہ ان یہ جو لوگ ڈسپیئر ہو گئے ہیں ان کو ڈھونڈو, ایجنسیز کو بولو ان کو ڈھونڈیں, ان کی فیملیز کے ساتھ ان کو ملاؤ, تم لوگوں نے آج تک اس کے اوپر کام کیوں نہیں کیا؟ تو وہ ڈپٹی اٹارنی جنرل صاحب آئے مائیں شائیں مارنے شروع کر دے. انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ دس از اے ویری گریو اینڈ سیریس میٹر, تم کو اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا, اور اس کے اندر جتنے بھی تو جو انٹیریئر منسٹرز پھر ہیں, یہ جو ابھی کا کرنٹ کا بھی ہے اور پیچھے کا بھی ہے, سب انٹیریئر منسٹروں کو پھر میں بلاؤں گا اور میں ان کو کوشچننگ شروع کروں گا, تو تم کو کیا اچھا لگے گا اگر تم لوگوں نے جواب نہ دیا تو پرائم منسٹر کو پھر میں عدالت میں بلاؤں؟ تو تم لوگ جو اس چیز کا جواب دو, کیوں یہ بندے غائب ہوتے ہیں ملک کے اندر, یہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ چل رہی ہے تم لوگوں کی. ایسے پاکستان کے آج ڈفرنٹ حصوں کے اندر جی 5 میں جو پوائنٹ کا میگنیٹیوڈ کا ارتھ کویک آیا, جس کے اندر اسلام آباد, پشاور, پنڈی, ملتان, فیصل آباد, ایبٹ آباد, سوات, بنار, کوہاٹ, ملاکند کے ایریے جو ہیں, اور تاجکستان افغانستان کا جو بارڈر ہے اس تک کے اوپر بھی اس کا افیکٹ آیا, لیکن تھینک گاڈ کوئی جو ہے لاس آف لائف کا کچھ رپورٹ نہیں آئی ہے. اینڈ جناب پاکستان کے اندر جو ہے وہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی ڈیتھ اینیورسری آ رہی ہے, تو اس کے لیے کچھ سکھوں نے انڈیا کے اندر پاکستان ہائی کمیشن کو کہا تھا کہ ہم کو ویزے چاہیے, تو پاکستان ہیز گیون 495 ویزاز ٹو یہ لوگ, اور یہ لوگ اب ادھر آئے ہیں پاکستان میں, تو یہ اب وزٹ کریں گے پنجا صاحب, ننکانہ صاحب, کرتارپور کوریڈور, और ये जो है सेलिब्रेशंस महाराजा रंजीत सिंह की जो है उनके अंदर भी ये करेंगे। ये पाकिस्तान के अंदर आएंगे जून 21 को और जाएंगे जून 30 को। इनको जो वीजे हैं पाकिस्तान ने अंडर पाकिस्तान इंडिया प्रोटोकॉल ऑन विजिट्स टू रिलीजियस श्राइन्स ऑफ 1974 के अंडर दिए हैं। आजाद कश्मीर के बैरिस्टर जनाब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब आज इंग्लैंड में पहुंचे हुए हैं। वहां पे आज उन्होंने ब्रिटिश जो हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और दूसरे एक्टिविस्ट उनके साथ मुलाकातें की और उनको एक दफा से फिर से बताया कि कश्मीर के अंदर जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर बेतहाशा कश्मीरियों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है और कोई वहां पे हिंदुस्तान जो है वो पीस की तरफ सस्टेनेबल पीस की तरफ नहीं जा रहा, तो इंडिया को जो है क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए टेस्ट करना चाहिए क्योंकि कश्मीरियों को उनका सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है उसका वादा यूनाइटेड नेशंस की जो क्लॉजेज है उन्होंने किया था जो अभी तक नहीं दिया गया। और ये कितनी सख्त बात है, खराब बात है कि यासीन मलिक साहब जो कि इतने पुराने लीडर हैं और बहुत ज्यादा उनकी सेहत भी खराब है, मरने के पास है, उनको लाइफ सेंटेंस दी गई है, तो ये क्या क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी नहीं है? एंड जनाब हमने मिस कर दी एंड वी आर रियली सॉरी फॉर दैट, हमारे वर्ल्ड म्यूजिक की दुनिया के किंग मेहदी हसन साहब, उनकी जो थी जनाब 9th जो थी वो थी डेथ एनिवर्सरी थी दो दिन पहले, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, बट फिर भी वी शुड यू नो रिमेंबर हिम। ही वॉज बॉर्न ऑन जुलाई 18th 1927 इन लूना राजस्थान और बहुत जबरदस्त म्यूजिशियन थे। सबसे पहले इनको जो है 8 साल की उम्र में इन्होंने गाना शुरू किया था और इनको अवार्ड दिया गया था KL सैगल संगीत शहनशाह अवार्ड इंडिया के अंदर। और पार्टीशन के बाद ये पाकिस्तान आ गए थे। 1957 में इन्होंने पाकिस्तान रेडियो के ऊपर गाना शुरू किया। 1962 की जो फिल्म आई थी फरंगी उसके अंदर जो इन्होंने गजल गाई थी गुलों में रंग भरे बादलों बहार, उसने इनको जो है फिर शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। एंड जनाब अनीस बज़मी साहब जो है नो एंट्री जो उनकी बहुत बड़ी हिट रही थी उसकी आप सीक्वल बना रहे हैं नो एंट्री में एंट्री, और लेकिन इसमें लोग बड़े वो हो गए थे, खुश हो गए थे क्योंकि इसके अंदर जो सलमान खान अनिल कपूर और फरदीन खान थे तो सोचा जा रहा था कि लड़कियां भी शायद वही लेंगे, बिपाशा बासु लारा दत्ता सलीना जेटली अनिशा देओल, लेकिन फिल्म बनाने वालों ने कहा है नहीं, लड़के तो शायद वही रहेंगे लेकिन लड़कियां नहीं आएंगी, जैसे कि जाह्नवी कपूर अनन्या पांडे परिणीति चोपड़ा। लेकिन अब यहां पर लड़ाई पड़ गई है, लड़ाई ये हर कोई सल्लू भाई की हीरोइन बनना चाहता है तो अब इसमें से कौन बनेगा सल्लू भाई की हीरोइन? तो अनीस बज़मी साहब आपको पता ही है बड़ी जबरदस्त फिल्में बनाते हैं, भूल भुलैया बनाई थी जो बड़ी हिट थी, अभी भूल भुलैया 2 बनाई वो भी ह्यूज जो है वो हिट है 15 इयर्स के बाद, तो अब ये 17 इयर्स के बाद जो है अब इसका सीक्वल नो एंट्री का बनाएंगे। शाहरुख खान साहब जो हैं जी आपको पता ही है कि बहुत सारी गेमिंग जो फ्रेंचाइज हैं उस वो उनके पास हैं, जैसे कि अपने मुल्क में वो चलाते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स, इसके अलावा लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स, अबू धाबी नाइट राइडर्स, और अब उन्होंने फ्रेंचाइज ली है फॉर द फर्स्ट एवर विमेन्स टीम ट्रिबागो नाइट राइडर्स विमेन्स टीम। तो वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये जो है अब मैं आई होप टू सी देम, क्योंकि होने वाला है विमेन्स कैरिबियन प्रीमियर लीग दिस ईयर, तो वो कहते हैं आई होप टू सी देम लाइव, तो आज उन्होंने ये खबर की। एंड जनाब एफ्रो कप एशिया की आज बम्बास्टिक न्यूज, जो इसमें एशिया 11 की टीम होगी उसमें विराट कोहली और बाबर आजम साथ साथ खेल सकते हैं।
ग्रेट न्यूज
है जी, बड़ी बड़ी न्यूज है ये होने वाली है 2023 में। एसीसी के जो हेड कमर्शियल एंड इवेंट्स हैं वो प्रभाकरन थनराज, उन्होंने आज कहा है अकॉर्डिंग टू forbes.com कि ये जो है T20 टूर्नामेंट होएगा और इसकी फॉर्मेशन बड़ी जबरदस्त होएगी और हम चाहते हैं कि एशिया के बेस्ट प्लेयर्स यानी कि इंडिया पाकिस्तान के बेस्ट प्लेयर्स को इसमें शामिल किया जाए, और ये जो है इसका भी हमने फाइनलाइज नहीं किया है लेकिन जैसे ही फाइनलाइज हो जाएगा तो हम इसकी डिटेल्स रोल आउट करेंगे। लेकिन लोगों का इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये दोनों एक टीम में खेल सकते हैं, दिस इज ह्यूज न्यूज, ह्यूज ह्यूज न्यूज। एंड जनाब यूरोविजन सॉन्ग कंटेस्ट जो हुआ था उसमें अब कहा गया था जो जीतता है वो उसके मुल्क में वो होता है, तो यूक्रेन ने जीता था और नेक्स्ट वहां पे होना था लेकिन अब ये जो है वहां पे नहीं हो सकता है, तो एज अ रिजल्ट जो है इसको यूके में अब ट्रांसफर किया जा रहा है। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज, जो श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में शुरू हो गया हुआ है ओडीआई, पहला ओडीआई तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था लेकिन सेकेंड ओडीआई आज श्रीलंका ने कमाल कर दिया, इनके जो फास्ट बॉलर हैं चमीका करुणा रत्ने उन्होंने 3 विकेट्स लीजी फॉर 47 रन्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, कैन यू इमेजिन, और रेन हो गई थी तो इसलिए इसको रिड्यूस कर दिया गया था 43 ओवर्स में, और ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे 189 तो इन्होंने चेज करते हुए बनाए 216, तो इस तरह से सेकंड इन्होंने जीत के दे बाउंस्ड बैक श्रीलंका।
ये भी हमारे आज की न्यूज एंड बाकी की न्यूज, मंडे को आपसे मुलाकात होगी मगर अभी आपने कहीं नहीं जाना है, अब तो शुरू होने वाला क्या
गुपशुप
गुपशुप गुपशुप अभी आएगा, गुपशुप में शाजे जी होंगी, शाजे मलिक होंगे, लियाकत मलिक होंगे, आरफा मलिक होंगी, माजिद मलिक होंगे, और शिजान मलिक भी होंगे।
हाँ जी, हाँ जी, आमिर मलिक,
आमिर मलिक
और जो है सारे मलिक, निशान मलिक,
सारे मलिकों को,
और जिधर जिधर आपकी साइकिल फंसी हुई है उसको फटोफट कार दौड़ाएं और कार पहुंचे, क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास अब।
रेडियो पे भी सुन सकेंगे आप, टीवी पे भी देख सकेंगे। तो कुछ स्पॉन्सर्स के पैगाम, विल बी राइट बैक। 4166201778 हमारा फोन नंबर है।
मस्जिद इब्राहिम एक फंड रेजिंग इवेंट का इनेकाद कर रहा है जो जून 18 शाम 6 बजे टोरंटो मैरियट मार्कम में होने जा रहा है। इस फंड रेजिंग में दुनिया के मशहूर गेस्ट स्पीकर शेख आला अल सैयद शिरकत करेंगे। मस्जिद इब्राहिम की तामीर को पूरा करने के लिए $600,000 की जरूरत है। आप सबसे गुजारिश है इस नेक काम में अपना हिस्सा जरूर डालें। मजीद मालूमात के लिए कॉल कीजिए तनवीर सुल्तान 416-566-3830, 416-566-3830।
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो, मैनुअल जां ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो। ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 जा quicktrucklube.com। QTL, बिकॉज वी केयर।
ओ माया मेहंदी रोका या व्यादा होवे मौका, प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर।
स्वीट महल वालियां दा बिल्कुल नवा प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर, 100 तो लेके 700 तक दी कैपेसिटी ते खाना उही लाजवाब। स्वीट महल वाला प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर, कन्वीनिएंटली लोकेटेड इन बॉन। हुणे कॉल करो आते अपनियां पार्टियां बुक कराओ 416-433-9191, 416-433-9191।
प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर।
डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है, क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने। उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नूं मिलेगी, ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहनगे।
S&S Lawyers को इन्हां सारे सवालां दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है। अपने हक जानन लई या सलाह लैण लई अज ही S&S Lawyers नूं कॉल करो 416-655-2000। अपनी कम्युनिटी दा सब तो वड्डा, वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजी सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747171।
शाह एंटरटेनमेंट के नासिर शाह लेकर आ रहे हैं दुनिया का मकबूल तरीन शो खबर हार आपके अपने शहर ब्रैम्पटन में जून 26 शाम 5 बजे एट कैनेडियन कन्वेंशन सेंटर ब्रैम्पटन में। खबर हार आफताब इकबाल अपनी पूरी टीम के साथ आपके अपने शहर ब्रैम्पटन में। टिकट्स और स्पॉन्सरशिप के लिए कॉल कीजिए 416-526-6800, 416-526-6800।
स्प्रिंग में गार्डनिंग सीजन अब शुरू हो चुका है कैरेटन सब्जी फार्म पर।
हर तरह के फल फूल और सब्जियों की पनीरी, चाहे लेने हो करेले,
भिंडी,
चप्पड़ कद्दू,
टिंडा,
हलवा कद्दू,
रामतोरी,
पालक,
सरसों का साग,
धनिया,
लहसुन के बीज,
प्याज की पनीरी,
प्याज के बीज और हर तरह के गार्डनिंग टूल्स,
पतली,
रम्बा,
कई,
मिट्टी, खाद और पॉटिंग मिक्स।
एट कैरेटन सब्जी फार्म 9058409000
0050 Airport Road, Caledon, Airport Road and Mayfield Gate Corner पर।
अब मॉर्गेज लेना और भी आसान, सेंटम फ्यूचर मॉर्गेज ग्रुप के काकब जावेद को कॉल करें। प्राइवेट मॉर्गेज फॉर एनी purposes, कमर्शियल मॉर्गेज, इंडस्ट्रियल मॉर्गेज, फार्म एंड हॉबी फार्म, वेरी कंपेरेबल rates फॉर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मॉर्गेज, न्यू कमर्स टू कैनेडा, फर्स्ट टाइम बायर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड, रीफाइनेंसिंग, डेब्ट कंसोलिडेशन, assist in real estate, he will make mortgage easy for you. Kokab Javed, mortgage agent, 416-454-6065.
दांतों के इलाज के लिए डॉक्टर ने बिल बहुत ज्यादा बता दिया। सोचती हूँ बैक होम जाके दांतों का मुकम्मल इलाज कराऊं।
छोड़ो भाई, किंग बेस्ट स्माइल डेंटिस्ट्री को विजिट कर लो। दांत निकालना हो, क्राउन्स, ब्रिजेस, डेंचर्स, इम्प्लांट्स, बच्चों के दांतों का मुकम्मल इलाज, रूट कैनाल ट्रीटमेंट और नए पेशेंट्स के लिए फ्री इलेक्ट्रिकल टूथ ब्रश भी है। कंसल्टेशन इज एब्सोल्युटली फॉर फ्री।
पर जाना कहाँ है?
288 किंग स्ट्रीट वेस्ट, हैमिल्टन में, 905-521-0540, 905-521-0540।
एशियन फूड सेंटर, इंडियन, कैनेडियन, साफ सुथरी ग्रोसरी दे नाल
कारकार विच मशहूर हो चुकिया एशियन फूड सेंटर हमेशा सस्ते रेट ते वधिया सेवावां देण लई वचनबद्ध है।
अपने एरिया विच पेंदे किसी भी स्टोर विच जाओगे तो जरूर बचत पाओगे।
वधेरी जानकारी लई एशियन फूड सेंटर दा इको एक नंबर याद रखो, 416-740-3262।
एशियन फूड सेंटर, 416-740-3262। एशियन फूड सेंटर।
फर्स्ट मॉर्गेज, सेकंड मॉर्गेज या फिर हो वे लोन,
सोचो ना बस, बिल्कुल भी होने मिलाओ फोन।
416-502-8000 स्ट्रेस चाहे लाख दा होवे या काख दा, उस जिंदगी मुश्किल कर देता है। बाकी बातें एक तरफ, आपके फाइनेंशियल स्ट्रेस का हल है शिराज शफीक, जिनके पास है मिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्राइवेट फंड्स। लास्ट मिनट क्लोजिंग्स हो या डिफिकल्टीज, सभी के लिए शिराज शफीक, 416-502-8000, लाइसेंस नंबर 10845, इंडिपेंडेंटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड।
अकाल 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 मॉर्गेजेस।
अजीत सुनते हो?
अब कह भी दो।
कितनी दफा तो कह चुकी हूँ।
मगर कब?
अब कुछ कहना वहना नहीं है, बस लेके जाना पड़ेगा आपको हियर मैक्स हियरिंग सेंटर पर।
अल्टीमेट हियरिंग सॉल्यूशन, नो ऑब्लिगेशन, कॉम्प्लीमेंट्री हियरिंग टेस्ट।
हियर मैक्स हियरिंग सेंटर, कॉल शिराज, 416-792-8792।
रिंगिंग, बजिंग, हिसिंग, टाइम टू गेट योर हियरिंग चेक।
बाय वन हियरिंग एड गेट वन 15% ऑफ, 416-792-8792। अल्टीमेट हियरिंग सॉल्यूशन, 416-792-8792।
कहीं मॉर्गेज नहीं मिल रही, झटपट मॉर्गेज दिला के सारी मुश्किल कर देंगे आसान। 11 साल से ज्यादा तजुर्बा और एक भरोसामंद नाम। हर किस्म की रेजिडेंशियल या कमर्शियल मॉर्गेज के लिए मॉर्गेज अलायंस की जैस्मिन परमार से राब्ता करें। रीफाइनेंसिंग ऑप्शंस, रिन्यूअल ऑप्शंस, मॉर्गेज डिफिकल्टीज, डाउन पेमेंट इश्यूज, सेल्फ एम्प्लॉयड, प्राइवेट फंड्स, सेकंड मॉर्गेज के लिए कॉन्टेक्ट करें मोस्ट ट्रस्टवर्दी जैस्मिन परमार से। नंबर टू कॉल 6479235659, 6479235659, लाइसेंस नंबर 10530।
टेली टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स, LEDs और होम अप्लायंसेस की हॉटेस्ट और ब्रांडेड रेंज के साथ 0% फाइनेंस गारंटी और लोएस्ट प्राइसेस और फ्री डिलीवरी इन GTA। तो इंतजार कैसा, अभी विजिट करें टेली टाइम ब्रैम्पटन, 280 रदरफोर्ड रोड, या स्प्रिंगडेल स्क्वायर शॉपिंग सेंटर, या इटोबिको, 1770 एल्बियन रोड, या 9909 मार्कम रोड। मज़ीद तफ़सीलात के लिए कॉल करें 905-455-1666। टेली टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स।
मेस्मराइज ऑप्टिकल, सनग्लासेस, आई ग्लासेस एंड कॉन्टैक्ट लेंसेस।
डॉक्टर ऑन साइट, गेट योर आई साइट चेक्ड, मेस्मराइज ऑप्टिकल,
मार्कम एंड शेपर्ड, 1789 मार्कम रोड, 416-335-0786।
कहते हैं कि माया को खींचे माया करकर लंबे हाथ। हैरिसन द मेजेस्टिक मॉर्गेजेस के साथ रेजिडेंशियल, कमर्शियल मॉर्गेज, रीफाइनेंसिंग आपने करनी है, किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है, सारे बैंकर्स और लेंडर्स के साथ डीप ताल्लुक आता है इनके। आपको फाइनेंसिंग का बंदोबस्त भी हो जाएगा और चार्जेस भी कोई नहीं देने पड़ेंगे। हैरिसन जी बड़ी कमाल की तिकड़म लड़ा सकते हैं, बस आप कॉल कर लीजिए और पैसे का अरेंज हो जाएगा। $228 से $1000 महीना कैसे बचा सकते हैं? कॉल हैरिसन Now 647-228-1000, 228-1000, Harry Sond of Majestic Mortgages।
क्या बात है बेटे, बढ़िया बाजार नजर आ रही है।
अबू जान, खुदा का वास्ता, इस गाड़ी से तो बेहतर एक गधा गाड़ी खरीदे, हर मोड़ पे रुक जाती है।
तो बच्चे परेशान क्यों होती हो? लो गाड़ी की चाबी दो, अभी लेकर जाता हूँ प्रीमियम ऑटो रिपेयर पर। गाड़ी की नब्ज देखकर खराबी की जड़ तक पहुँच जाएंगे।
मेरी सहेली ने भी कहा था,
वहाँ पर कूलिंग सिस्टम, इंजन ट्यूनअप, चार व्हील कंप्यूटर बैलेंस, ब्रेक्स, नए और पुराने टायर, साफ ऑयल फिल्टर, मुफ्त में चेंज, स्टार्टर, अल्टरनेटर गारंटी के साथ ठीक करते हैं। बस इसके बाद तुम्हारी गाड़ी फर फर भागेगी। 21 मेलविक ड्राइव, इटोबिको, टेलीफोन 416-747-6800।
اپنے دانتوں کی حفاظت کے لیے رابطہ کیجیے آپ کی اپنی ڈاکٹر نازیہ رحمان. لیزر ٹوتھ وائٹنگ، روٹ کینال ٹریٹمنٹ، ڈینٹل امپلانٹس،
فری ڈینٹل ٹریٹمنٹ فار کڈز، ہیلتھی اسمائلز انٹیریو کے تحت ڈینٹسٹری آن مسز ساگا، 65 مونٹپیلیئر اسٹریٹ، یونٹ 104، مسز ساگا روڈ اینڈ فائنینشل ڈرائیو.
کال کیجیے ڈاکٹر نازیہ رحمان 9058721100. کنسلٹیشن ایبسولیوٹلی فار فری. ڈینٹسٹری آن مسز ساگا.
کینیڈین امیگریشن کے لاس اور پالیسیز میں مستقل تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، اسی لیے انتہائی ضروری ہے کہ آپ کا کام ماہرانہ طریقے سے تازہ ترین معلومات کے تحت کیا جائے. میرا نام یاسمین طیبی ہے اور میں گزشتہ 25 سالوں سے سٹیزن شپ، پی آر رینیولز، اسپاؤزل اسپانسرشپ اور ایجنسی کے پیچیدہ کیسوں کو کامیابی سے کر کے ہزاروں لوگوں کی رہنمائی کر چکی ہوں. آپ مجھ سے 9055130012 پر کال کر کے اپوائنٹمنٹ بک کروا سکتے ہیں یا kanimsolutions.ca پر جا کر ہماری فرم کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں. ہمارے آفس میں سرٹیفائیڈ اردو ٹو انگلش ترجمے کی بھی سہولیات موجود ہیں.
گرل ان ہارٹ مسز ساگا میں آرڈر وائے فون عمران بھائی کو کال کریں.
انتہائی لذیذ بریانی کھانا ہو یا پھر کڑھائی کھانا ہو یا پھر سٹیکس کو انجوائے کرنا ہے تو آپ آرڈر پلیس کیجئے 9054058383. گرل ان ہارٹ، خوبصورت دانت، با اعتماد مسکراہٹ اور با اعتماد گفتگو. آپ کی اور آپ کے خاندان کی مسکراہٹوں کی ضمانت. فلنگز، کراؤنز، بریجز، کلیننگ، ایکسپٹنگ نیو پیشنٹس، فری کنسلٹیشن، دانتوں کی سنبھال کے لیے ڈاکٹر پدمجا، 310 شیپرڈ ایونیو ایسٹ، 299-7466.
مائی گاڈ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سارے کے سارے؟ یہ بیشتر
آج آج شروع ہی کر دیا. میں تو کچھ نہیں کہنے والا تھا، وہ کہہ رہے ہم تو کوئی چیز نہیں ہے. کہہ رہے او گاڈ السلام علیکم و رحمۃ اللہ،
بڑا تنگ ہو کے اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم.
نہیں نہیں، مگر سلام کس کو کیا؟ او گاڈ السلام علیکم و رحمۃ اللہ. او ہم بھی بیٹھے ہیں یہاں پر
راہوں میں، ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں،
پڑے ہیں راہوں میں،
دل توڑنے والے دیکھ کے چل.
ویلکم ٹو دا ٹن پارٹی. السلام علیکم، ہمارے فام مظفر،
آپ کا خادم جی.
آپ لوگ ہوں گے اپنے لیے ہوں گے، میں تو ماجد جمال. سوری جی، کافی خیال نہیں آ سکا یہاں پر، بٹ آئی واز وتھ یو.
No,
I was watching. I was watching.
You the liar. You the liar.
I was watching.
کیا آپ نے دیکھا؟ کیا آپ ایک ایک چیز بتا دیں،
کوا کا
ایک چیز بتا دیں جو آپ نے دیکھی.
کالے کوے سے ڈریو،
میں مہ کے چلی جاؤں گی تم دیکھتے رہو.
نہیں آپ نکل چکے ہیں وہاں سے، اپنی کافی میں کہ انہوں نے کہا دیا وہ نہیں آپ کو کر رہے
ہیں کہ بندے بھی مہ کے جانے
جانا شروع ہو گئے ہیں. دیکھو ذرا اتنے تنگ ہیں بیویوں سے. معصوم معصوم،
یہ پتا میں کہ یہ جو ہے نا وہ گھر دھمایا تھا.
نہیں میں کہ آپ کو نہیں پتا نا، میں کہ ہمارے جو اردو میں بارز ہیں ان کو میں کہ بولتے ہیں،
وہ والے میں
یہ وہ ہے. میں
ماجد بھائی گا رہے ہیں تو وہ میں کہ وہ
میں کھانے ہیں، وہ
میں کھانا.
اب میں سمجھا.
شادیہ جی تھی رسول جی،
ہاں جی
تو اسی بھی طرف کراش پڑو،
ہم تو وہی ہیں،
وہی پرانے ہیں، سیٹ پہ بیٹھے ہیں.
شادی ہمارے ایک نام تو سنا ہوگا.
سب سے پہلے پروگرام میں ممتاز صاحبہ، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. لیاقت بھائی
جی،
زندگی میں جنہوں نے اچھے دن دیکھے ہوں، یہ مسقط سے ہوا کرتی تھی. جن کے ہسبینڈ یونیورسٹی میں ہی پڑھایا کرتے تھے ڈاکٹر صاحب، اور بڑی خوبصورت زندگی گزاری. اور کہتی ہیں کہ جب تک ان کے ہسبینڈ حیات تھے، بچوں کو بڑے طریقے سے پالا اور یہاں سارے بچوں کو پالا، اور اب شی از لیونگ اے ویری انڈیپینڈنٹ لائف. ممتاز صاحبہ بہت شکریہ، رات آپ سے بڑی ڈیٹیل میں بات ہوئی. شازیہ جی آپ کو بہت اپریشیٹ،
تھینک یو. سنو بھی دسو انڈیپینڈنٹ لائف کس طرح گزاری جاتی ہے. ਕੋਈ ਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਬਈ।
ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਨਾ ਸ਼ੌਹਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ,
ਅੱਛਾ
ਫੜੀ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਹਾਊ ਟੂ ਗੈਟ ਅਵੇ ਵਿਦ ਮਰਡਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਪਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ।
ਪੜ੍ਹ ਲਈ
ਅੱਛਾ
ਪੜ੍ਹ ਲਈ
ਅੱਛਾ ਓਕੇ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ਰ ਬਤਾਈਏ ਆਪ ਜ਼ਰਾ।
ਮੈਨੇ ਆਪਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਹਾ ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਕੇ
ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇ ਕਹੇ
ਹੈ ਕਿ ਬਤਾਈਏ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ चलो ठीक है, आज के प्रोग्राम में क्या हुआ जो बताओ।
आज के प्रोग्राम में भी लोगों ने आपकी बड़ी तारीफ की।
हाँ फिर से गए, फिर से गए।
और मजद भाई के बारे में क्या कहा?
नहीं बहुत कुछ नहीं,
नहीं नहीं बताए बताए।
शादी बहुत अच्छी है।
हाँ एक दफा और कह दे।
देखिए माजिद भाई, दुनिया में हर इंसान, ये जो लोग मोटे होते हैं ना
वो खुश पाश होते हैं।
नो वो बहुत सी चीजों को, वो कहते हैं तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या कम है जिसको छुपा रहे हो। बोलो अगर आप साइकोलॉजिकली किसी की साइकोलॉजी को देखें ना, फसाई चलोजी को देखें, ठीक है, तो शाजिया स्टेज हैप्पी ऑल द टाइम एंड डेफिनेटली शी हैज 110 थिंग्स बैक ऑफ द माइंड, मगर शी इज ऑलवेज हैप्पी। एंड मैं हमेशा कहा करती
नहीं, आप मोटापे पे बात कर रहे थी पहले।
नहीं तो ना छेड़ना उन्होंने,
नहीं आप बात फेर दी ना, आप फेर दी बात उन्होंने,
दोबारा से करें,
दोबारा से बात नहीं करें।
ये जो आदमी जितने मोटे नजर आते हैं ना,
नहीं नहीं आदमी क्या, हमें आप आदमी
ये मोटे नहीं है, इनको मार इतनी पड़ती है कि ये सूझे।
बात यह है कि आप जहाँ भी चले जाए, आप गोप को देख लें हिंदुस्तान में, आप आगा को देख लें इंडिया के, आप नन्ना को देख लें, आप खालिद सलीम मोटा को देख लें, आप जो थोड़ा सा जिनका वजन बड़ा होता है, मोटा नहीं कहता मैं, वो जॉली लोग होते हैं, वो हमेशा मजाक जो है उनमें एक पन होता है। वो
देखो
वो पतले लोगों के साथ सड़िया
नहीं, नहीं, नहीं लियाकत भाई, हम ओवर वेट नहीं है, ये सारे अंडर वेट है।
नहीं नहीं सड़ियल है,
मैं नॉर्मल हूँ, मैं नहीं अंडर वेट।
तुम कहने क्या है नॉर्मल,
मैं पता है
पता नहीं कितों नॉर्मल हो।
मुजफ्फर भी कहा करते होते थे, मुजफ्फर कहते थे चलो तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलूं, मैंने कहा क्यों, तो कहते तुम्हारा दिमाग चेक करा।
मुजफ्फर बड़ा सियाना बंदा सी,
अल्लाह नहीं मुजफ्फर को करवट करवट जनरल सीख करे। एनीवेज खुश आमदीद आज के प्रोग्राम में। लो जी मैं आपको बताता हूँ, जिससे आप मोहब्बत करते हो अगर वो तंग करे ना आपको, तो मैं आपको एक शेर बताती हूँ, बस ये सुना देना, यो एक बम दी गोली होनी है ना वास्ते। कहते तू अगर पत्थर का है सनम, तो हम भी हथौड़े से कम नहीं, ठाठा बरसेंगे सर पर, तू किसी और का बन तो सही।
यानी तुसी हथौड़ा ग्रुप नु फिर रिवाइव करन लगे हो भाई, ओ माय गॉड, यानी तुसी पाकिस्तानिया ने कनाडा में भी आके हरकत नहीं छोड़ी,
अली चक्कर देके चले गए, मुजफ्फर अली ने मुझे जुल दे दिया।
अच्छा
ना मैं कहती थी मुजफ्फर अली अगर आपने किसी से शादी कर ली ना, तो मैंने आपको भी गोली मार देनी, उसको भी गोली मार देनी, खुद को भी मार लेनी।
ओ माय
गॉड,
हाँ
तो जहरा सारों को मार दी, मरूंगी ना
दो को तो मार दी, अब मैं मरूं ना मरूं।
हाँ और देखे जरा ये हम पाकिस्तानियों को ऐसे ही नहीं कोई टेररिस्ट कहता है, देखे उसका मुंह बोलता सबूत है, ये देखे अभी कल हमारे दरवाजे के बाहर लगा होगा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, काले सूटों वाले आ जाएंगे, भाई उठो इधर इधर चलो चलो चलिए निकलिए, असी नहीं ना भाई सब
We sat down, yeah, 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 yeah. When we remembered Zion,
yes,
by the rivers of Babylon, there we sat down, yeah, we wept when we remembered Zion,
yes.
जी
मतलब एक ही
ए असी जरा अंकल सैम दे मुल्क विचों हो के आया फिर के आया अंदरो।
आई जस्ट कॉल्ड टू से
आई लव यू
आई नो दैट।
अच्छा मेरी बात सुने, अगर अगर ये आशिकी चलनी है इधर तो हम फिर जाए, हम भी इधर क्या कर रहे हैं भाई,
तुम दुआ नु खुश नहीं देख सकते।
नहीं भाई ये किस तरह की खुशी है जो आप दोनों के बीच में है?
रूहानी सिलसिले में
अरफाना कलाम है। अच्छा मेरी बात सुने, आज आप पिछली दफा तो आप बेगम साहबा को लाए थे, आज आप क्यों नहीं लेकर आए उनको भाई?
कौन सी वाली?
वही जो पिछली दफा आई थी, जो पिछली दफा आई थी वो वाली।
मैं देख रहा था कि बड़े खामोश बैठे हुए,
हाँ मुंह से इनके लफ्ज नहीं था निकल रहा।
भाभी बैठी हुई थी,
मैंने देखा था नीचे पांव पे पांव भी रखा हुआ था।
और ये जो थी ना ये नहीं नहीं माजद भाई
बैठी थी यार, लेफ्ट पे कहां बैठी?
हां वही लेफ्ट में बैठी थी वो, आप इधर बैठे थे, आप इधर वाले बैठे थे, वो उधर बैठी थी, लेकिन उनकी जो पोनी थी ना आपके गुर्दे पे थी।
देखा नहीं मैंने, उसने पांव पे पांव भी रखा।
ओ जी ए पोनी गुर्दे थे सी इंज करके माजद पे लियाकत भाई थे, हिल नहीं सक सकते।
ये घर घर की कहानी है।
अच्छा
आप सिर्फ मेरे मुतलक बात ना करें, घर घर की कहानी।
अच्छा अच्छा, नहीं नहीं किसके घर?
आप भी ना माजिद जमाल हो जाए, माजिद जमाल अपने घर में शोहर भी है,
उनका घर है
सास बड़ा अपने घर को बड़ा प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है।
कौन से वाले?
ये अपने घर में